जय सीताराम
पूर्णानं अपारं शांतं घनानं अचलानं ध्रुवानं नित्यानं बोधिस्वरूपानं ज्ञानस्वरूपानं आनंद ही आनंद आनंद। महापुरुषों की जो महिमा है, वास्तव में जो सच्चे महापुरुष हैं उनकी महिमा कोई बतला ही नहीं सकता। एक नंबर तो महापुरुष है परमात्मा, और दो नंबर महापुरुष है उन परमात्मा को जो प्राप्त हो चुके हैं वे पुरुष। जो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाते हैं उनको भगवान कहते हैं। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा मेरा भक्त उसको प्यारा। और ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा ने प्राप्त हो है उसको गुणातीत कहते हैं। किंतु आखिर के वहां सबका परिणाम एक ही है, क्योंकि यद संख्य प्राप्त स्थान तद योगी रपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान, जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही आपने प्राप्त किया जाता है। इस उद्देश्य को समझ करके सांख और योग को जो एक समझता है वो ठीक समझता है। महापुरुषों की महिमा वाणी से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वाणी की पहुंच नहीं है वहां। एक कोई विलक्षण वस्तु जो कि अलौकिक वस्तु को हम देखते हैं तो इस लोक में उसको समझा नहीं सकते। महापुरुष खुद भी महापुरुषों की महिमा नहीं गा सकते। गाना और बताना जो है ये तो वाणी से होता है, और वाणी की वहां पहुंच रही है। फिर भी शास्त्रों के बीच के मां जो महापुरुषों की महिमा बतलाई गई है वो वास्तु के मां उनका एक प्रतिबिंब मात्र है। ईश्वर की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा कोई भी ऐसा नहीं बतला सकता। नाम की महिमा, भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, और भगवान के गुणों की, भगवान के प्रभाव की कोई महिमा बतला ही नहीं सकता। इसी प्रकार से थी महापुरुषों की महिमा भी कोई बतला नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं नाम की महिमा के विषय में, कवहू कहां लग नाम है बड़ाई, राम न सकही नाम गुने गाई, कि नाम की बड़ाई, नाम की महिमा मैं कहां तक कहूं। जिसका नाम राम है वे खुद भी आपके नाम की महिमा नहीं गा सकते। जब ऐसी बात है तो भगवान आपके स्वरूप की महिमा कैसे बतला सकते हैं, और आपके गुण और प्रभाव की महिमा कैसे बतला सकते हैं। फिर भी लोग जो बतलाते हैं वो उसे का एक आभास मात्र है, एक प्रतिबिंब मात्र है। बल्कि हम लोग महापुरुषों की, ईश्वर की और ईश्वर के भक्तों की जो महिमा कहते हैं वो कैसी है कि वो स्तुति के मानिंदा है। शब्दों तो जानते ही नहीं, और जानते हैं ऐसा कोई उदाहरण घर करके मन पेश नहीं कर सकता, और फिर वाणी के द्वारा तो कहा ही कैसे जा सकता है। एक छोटी सी कहानी कहता हूं, हमको कहानी बहुत याद आ जाती। दो चमारीन थी, वे एक प्रकार से कुएं से पानी भर करके लेकर आ रही थी, और शहर से थी राजा का कंवर घोड़े पर बैठ करके हवाखोरी के लिए जा रहा था। उसके एक पैर के मां सोने का कड़ा था। उसको देख करके एक तमारिन ने कहा कि देख बहन, इसके पैर में सोने का कड़ा है। तो दूसरी ने कहा कि भाई, ये तो राजा का लड़का है, इनके कौन बात की कमी है, ये चाहे तो गुड़ का बना सकते। राजा का लड़का सुनकर हंसता है कि देखो ये मूढ़ है, इनको ये पता नहीं कि एक रत्ती सोने के मां शेर पर कूड़ा है। 5-7 शेर आ जाए कोई जमाने में शेर पर, तो ये क्या समझे। तो वो हंसने लगा। इसी प्रकार हम भगवान की जब स्तुति गाते हैं तो भगवान हंसते हैं हम लोगों को, हम तो खूब बढ़ाकर कहते हैं किंतु भगवान हंसते हैं। ऐसे महापुरुष जो है वे हंसते तो नहीं किंतु समझते हैं कि ये अपनी समझ से हमको बड़ा बतलाते हैं, करते हैं छोटा। जो गुणातीत पुरुष है वे उस परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और हम उसे के शरीर को जो संसार में हमारी दृष्टि में है उसको महात्मा मान बैठती है, तो उसकी आत्मा, उसके भीतर में जो आत्मा जो पहले थी वो ही परमात्मा को प्राप्त हुई है, उसका शरीर नहीं। और वो परमात्मा को प्राप्त हो गया क्यों, ब्रह्म ये भवति, ब्रह्म वेत्ता, ब्रह्म हो जाता है। अब उसको उस ब्रह्म से हम अलग करके के उसकी महिमा गावें कि ये महापुरुष जो है बड़ा अच्छा है, उससे अच्छा है, उससे अच्छा है, किंतु परमात्मा से इसका दर्जा नीचा है। अब वो हंसता है कि देखो ये बेचारे भोले दारे हैं, पता नहीं। किंतु महात्मा जो पुरुष है वो परमात्मा से अलग होकर के अपनी महिमा की स्थापना नहीं करता। वो यदि शरीर बन करके अपने को महात्मा बतला रहे तो वो अपने आप को नीचा बतला रहा है, और यदि शरीर नहीं बन करके शरीर के बीच के मां जो एक प्रकार से जीवात्मा है, उस जीवात्मा को अपना स्वरूप बतला करके उसको महात्मा बतला रहे, परमात्मा से अलग, तभी एक प्रकार से वो छोटा ही बनता है। परमात्मा से तो कोई अलग चीज है ही नहीं, जब परमात्मा में प्रवेश हो जाता है, मिल जाता है, सायुज मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में वो एक ही भाव हो जाता है, तो वो परमात्मा से अलग कोई चीज रही नहीं। जब इस बात को वो समझ जाता है तो फिर अपना जो नाम है, अपना जो रूप है, परमात्मा से अलग कर कर करके वो एक प्रकार से अपनी अलग कोई महिमा नहीं बतलाता। कोई मनुष्य उसको परमात्मा से अलग कर करके मानते हैं और उसकी महिमा गाते हैं तो उसको छोटा बनाते। ऐसे रहस्य के जानने वाले जो महापुरुष हैं वे अपने नाम और अपने रूप को कभी नहीं पूजाते, तो फिर कौन पूजाते हैं। और भगवान ने जो पूजा की बात कही, हाँ बोलो, कही पूजा की बात कही कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन सोच मार्जुन ब्रह्मचर्य अहिंसा से सारी रंग तप उच्चते। ये शरीर संबंधी तप है। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, और गुरु जो अपने से जो बड़े हैं, माता पिता आचार्य और समझो जो ज्ञानवान, इनका जो पूजन यानी सत्कार आदर, ये एक प्रकार से शारीरिक तप का एक लक्षण। शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, आर्जव माने सरलता, और ब्रह्म शरीर का पालन, 8 प्रकार के मिथुनों का त्याग और अहिंसा, ये 5 जो है शरीर संबंधी तप है। उसमें सबसे बढ़कर एक नंबर देव जिस गुरु प्राग्ञ पूजनम। तो ये जो पूजा है अपने जो बड़े हैं उनके शरीर की पूजा है, तो ये एक प्रकार से थी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हम लोगों को उनकी पूजा करनी ही चाहिए। किंतु जो ज्ञानी महात्मा जो पुरुष होते हैं ना, वे तो ये समझते हैं कि वे तो एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म से अलग नहीं अपनी सत्ता मानते, तो ब्रह्म की पूजा ही उनकी पूजा है। तो वे कहते हैं अपने शरीर के द्वारा कि संसार के बीच में पूजने के योग साक्षात परमात्मा है, सच्चिदानंद ब्रह्म है पूजने के योग, और वे ही सज्जु के मां विष्णु के रूप से, त्रेता के मां राम के रूप से, द्वापर में समझो कि कृष्ण के रूप से प्रकट हुए। इसलिए श्री विष्णु की, श्री राम की, श्री कृष्ण की जो पूजा है वो ब्रह्म की पूजा है। तो वे एक प्रकार से उनकी तरफ लगाते हैं, वे समझते हैं कि राम का जो नाम कितना मधुर है और राम का जो स्वरूप बड़ा मधुर है। इसी प्रकार से थी नारायण का नाम और नारायण का रूप बहुत ही मधुर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी का नाम और उनका रूप भी मधुर है। उनके रहते हुए इनको यदि मैं इस व्यक्ति के नाम और रूप को पूजाऊं तो इनको धोखा देना है, और मैं भी खुद महात्मा बनकर ऐसा करूं तो मैं भी अपनी आत्मा को धोखा देता हूं। न इसमें इसका कल्याण है और न इसके मां मेरा कल्याण। ख्याल करके देखो भरजी महाराज जो है क्या कह रहे हैं। जिस समय के मां सब सभा इकट्ठी होकर के और भरजी को कहने लगे कि आज का दिन और मुहूर्त बहुत उत्तम है और राज तिलक की सारी सामग्री मौजूद है, सब तीर्थों का जल मौजूद है और सब प्रजा के लोग और बड़े बड़े धनी लोग और मंत्री लोग और सब माताएं और समझो कि बशीर जी कहता मैं भी, सब ये चाहते हैं कि आज ऐसो आपका तुम्हारा राज तिलक को हम सब देखें। भरत ने कहा कि ये बात आपने मेरा हित समझ करके कही होगी, किंतु उसके माँ मुझको राजा बनाने से उसने न तो प्रजा का हित है न आप लोगों का हित है, न उसके माँ मेरा हित मुझको दिखता है। इसलिए आप बड़ों की जो आज्ञा है उसकी मैं अवहेलना करता हूँ, इनकार करता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, किंतु मैं इसके लिए लाचार हूँ, मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन नहीं कर। राजा होने के योग तो राम ही है। तो उत्तम जो पुरुष है वह तो ये कहेंगे कि पूजा के योग, स्तुति के योग साक्षात भगवान राम। और हमारी पूजा करके और हमारे नाम की, हमारे रूप की पूजा करके आप एक प्रकार से आपको तो कुछ लाभ नहीं होगा और मेरा सो पतन हो। तो वे पुरुष समझते हैं कि एक प्रकार से वास्तव में जो है सो नाम और रूप, कुछ नाम और रूप भगवान के पूजने चाहिए जिससे पूजने वालों का कल्याण हो। और जो आप एक प्रकार से थी भगवान के स्थान में बन जावे, महात्मा के स्थान में बन जावे और अपने नाम रूप को पूजावे, तो हमारी दृष्टि के बीच के मां वो गलती के रास्ते पर है। ये आपको मैंने एक रहस्य की बात बतलाई। इस प्रकार जो उच्च कोटि के महात्मा पुरुष है वे असली मार्ग बतला देते हैं, और इससे बढ़कर और क्या मार्ग हो सकता है, और भगवान के समान और महापुरुष कौन हो सकता है। तो असली जो सर्वोपरि महापुरुष जो भगवान है उनकी जो पूजा करना और करवाना ये अच्छे पुरुषों का कर्तव्य है, और अपना नाम और अपना रूप पूजाना ये समझो कि जो हम लोग जैसे उस तत्व रहस्य को नहीं जानने वाले जो सब हैं, ये सब सारी दुनिया अपने नाम और रूप को पूजा रही है, और मैं भी कैसे कहूं कि मैं नहीं पूजा रहा हूं। मैं कोई आप लोगों से कोई अलग थोड़ा ही, मेरा ये कहना नहीं समझना चाहिए कि आप लोग तो नाम और अपने रूप को पूजाते हो और मैं नहीं पूजाता। मैं तो ये कहता हूं कि हम लोगों के बीच के मां ये जो भाव है ये इसमें न हमारा हित है और न संसार का हित है। तो भूले भटके भाइयों को असली मार्ग बतलाना चाहिए कि भाई पूजने के योग एक प्रकार से भगवान है, उन्हीं का जो नाम है, रूप है, लीला है, महिमा है, गानी चाहिए। और उनको जो प्राप्त हो गए, उसके मां जो मिल गए हैं, वे उनसे अभिन्न है, इसलिए भगवान के नाम रूप की पूजा के अंतर्गत ही उनके उनकी पूजा आ जाए, अलग की कोई जरूरत नहीं। फिर भी एक प्रकार से थी शास्त्रों के बीच के मां जो है, जो भगवान की उस कोटि के भक्त हैं, उनकी महिमा शास्त्रों में बतलाई है, इसके आधार के ऊपर हम भी आपको बतला देते हैं। किंतु इसके बतलाने से आप हमारे को पूछो कि भाई जिनकी आप महिमा गाते हो, ऐसे पुरुषों का नाम बतलाओ कौन कौन है, तो मैं यदि नाम बतलाऊंगा तो उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए कि मुझको परीक्षा सो नहीं आती, यानी मैं परीक्षा के बीच में फेल हूं, इसलिए उस पर आपको विश्वास नहीं करना। हाँ, शास्त्रों के आधार पर महिमा बतला देता हूं महापुरुषों की और उन महापुरुषों के संघ की। उन महापुरुषों का जो संघ है उनकी महिमा है, वो महापुरुषों की है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, सकल मिली जो सुख लव सतसंग, ये बात है मेरे प्यारे। स्वर्ग का जो सुख है और मोक्ष का जो सुख है, इन दोनों को तराजू के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े के बीच के मां एक क्षण के सत्संग का जो आपने सुख हो रखा, तो एक क्षण के सत्संग के समान स्वर्ग की तो बात ही क्या, जो अपवर्ग जो मुक्ति है वो भी उसके बराबर नहीं। यदि कहो कि भी ऐसा सुख हम लोगों को तो कभी हुआ ही नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि असली सत्संग आपने कभी किया भी। जब तुलसीदास जी कहते हैं तो वे झूठ थोड़े कहते, तो असली सन क्या, भागवत को देखने से और तुलसीकृत रामायण को देखने से ये असर होता है, सत माने परमात्मा, संग माने प्रेम। परमात्मा में जो प्रेम है वो ही एक नंबर का सत्संग, और दो नंबर का सत्संग वो है कि भगवत संगी संगाना, भगवत संगी जो पुरुष है माने भगवान के जो भक्त है, भगवत प्राप्त जो पुरुष है, उन पुरुषों का जो संग है वो भी सत्संग। एक नंबर तो भगवान के बीच के मन जो प्रेम है वही असली सत्संग है, या भगवान का जो संग है वो असली सत्संग है, या भगवान में जो प्रेम है वो असली सत्संग। भगवान का संग माने भगवान का साथ, भगवान का संजोग, भगवान की अपने प्राप्ति। और जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी उन पुरुषों का संग भी दो नंबर के बीच के मां सत्संग है, और तीन नंबर में सत्संग वो है कि उस मार्ग के मां चलने वाले जो पुरुष हैं, जैसे समझो कि किसी अंश में आप और हम लोग, ये तीन नंबर का सत्संग। ये तीन नंबर का कैसे, क्योंकि वर्षों के वर्ष बीत गए ना, आप भी अपने सत्संग करते हैं और हम भी एक प्रकार से सत्संग करते कराते हैं, किंतु विचार करके, हृदय से विचार करके न्याय युग देखते हैं तो देखने के मां कोई 150 आदमियों का भी कल्याण नहीं है, 150 की तो बात दूर ही, 10-5 का भी हमारे ख्याल में कोई नाम नहीं आता, जो एक आपने भजन ध्यान कर करके इस संसार से आपने भगवान की कृपा से अपने भगवान को प्राप्त हो गए, वो तो अलग बात है। किंतु आप लोग जो सत्संग की बात सुनते हो, हम सुनाते हैं, इसके बल के ऊपर कोई हुआ हो तो उसकी बात हम कहते हैं। और तो यूं तो समझो कि मरने के समय में भगवान को याद करता हुआ जाता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव समय मुक्त्वा कलियुगं ये प्रयाति स मद भावं याति न सत्संग से। अंत काल के मां मेरा समय करता हुआ जो देह को त्याग कर जाता है, भगवान कहते हैं, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं। तो इससे सब बहुत आदमी प्राप्त होते हैं भगवान को। अरे जो समझो कि यहां मरते हैं इस गंगा के किनारे, इस मायापुरी में, जो सातपुरी में एक पुरी है, यहां मरने से इस मायापुरी के प्रभाव से, गंगा के प्रभाव से, और अंत समय में भगवान के भजन ध्यान के प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से यदि किसी का कल्याण हो जाए तो उसके विषय में आपका हमारा कोई अपने उसमें हाथ नहीं। उसमें यदि सब कोई निमित्त बन लिए तो वास्तव के बीच के मौसम जो कि वो अपना कोई किसी का प्रभाव नहीं। और फिर चार नंबर का सत्संग वह है कि गीता रामायण भागवत आदि जो धार्मिक पुस्तक है उनका जो सुन करके, उनको पढ़ करके, उनकी आलोचना करके, उसमें प्रवेश करके उनके तत्व रहस्य को समझना और समझ करके लाभ उठाना, शास्त्रों का जो संग है वो भी सत्संग। तो यहां जो संग की महिमा है वो एक नंबर और दो नंबर, भगवान के संग की और भगवत प्राप्त पुरुषों के संग। और भी महिमा बतलाई
मारी का राम पद कोशिन दिन राजपियावर।
सत्पुरुषों के संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती, और हरि की कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और मोह के नाश होए बिना भगवान के मां जो दृढ़ जो अनुराग है, तीव्र जो अनुराग है वो नहीं होता। बिना समझो कि प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते। तो इसलिए भगवान के मां प्रेम हुए इसके लिए सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। अब ये बात आई कि सत्पुरुषों की पहचान क्या, कि गीता के मां सत्पुरुषों के जो लक्षण लिखे इन्हें जिसके मां हो वो ही सत्पुरुष। मतलब गीता के श्लोकों के बीच के मां सत्पुरुषों के लक्षण कहां लिखे, कि बहुत अध्यायों के बीच के मां दूसरी अध्याय के मां समझो कि 51 के श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत स्थित प्रग के नाम से जो लक्षण बतलाए उनके अंतर्गत महापुरुषों के स्थित प्रग पुरुषों के लक्षण भी बतलाए गए। तो साधन को बात देकर के उनके महापुरुषों के लक्षण निकाल, और पांचवी अध्याय के बीच के मां 17 के श्लोक से लेकर के 26 के श्लोक तक ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बतलाए। और इसी प्रकार से थी गीता की 6 अध्याय में 7, 8, 9 इन 3 श्लोकों के मां योग के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बतलाए। तो बोला आपने 4 और 3 अध्याय की बात नहीं कही, बोले उसमें भी है किंतु उसमें कम संख्या में। 3 अध्याय के बीच के मां 17 श्लोक में ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण, कुछ 18 में भी, 17-18 दोनों को मिलाकर इसी प्रकार से थी चौथे अध्याय में भी। चौथे अध्याय के नौ के श्लोक में उन ज्ञानी महापुरुषों की प्राप्ति का उपाय बतला करके दसवें के बीच के माँ उनके लक्षण बताए। बीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। ऐसे ही और भी अध्यायों के बीच के माँ छठे अध्याय के माँ भक्ति के द्वारा प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण 31 और 47 के श्लोक में और ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण 36 अध्याय के 32 के श्लोक में। तो बहुत ही श्लोकों के बीच के हम आते हैं, किंतु प्रधानता से मैं अब आपको बतलाता हूँ भक्ति के द्वारा प्राप्त हुए महापुरुषों के लक्षण विस्तार से थी। गीता की 12वीं अध्याय के माँ 13 के श्लोक से लेकर के और 19 के श्लोक तक यूं को अध्याय की समाप्ति तक और 14वीं अध्याय के बीच के माँ 22 के श्लोक से लेकर के 25 के श्लोक तक जो लक्षण महापुरुषों के बतलाए हैं वे लक्षण जिनके वहां घटे वो ही महात्मा पुरुष। तो आप कहीं जी की बात तो ठीक, किंतु हम तो इस प्रकार से किसी के हृदय को पहचान नहीं सकते। तो बोले दूसरा उपाय। हाँ बोले वो बतलाओ कि जिन पुरुषों का संग करने से भगवान की भक्ति आपके हृदय में आवे, हृदय में जागृत हो, जिन पुरुषों के संग से दर्शन से भाषण से सपस से वार्तालाप से चिंतन से आपके हृदय के बीच के मां अदृष्टास्त्र भूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। इन लक्षणों की जागृति तुम्हारे हृदय में हुए तो तुम समझो कि ये भगवान के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ये भगवान की भक्ति की जागृति कैसे होती। इन श्लोकों का अर्थ बहुत बताया जाता है, आप सब समझते हैं। इसका अर्थ यह है कि सारे प्राणियों के मां जिनका द्वेष भाव नहीं है और सबके ऊपर दया है और सब में प्रेम है, और वो दया और प्रेम निष्काम हेतु रहित दया हेतु रहित जो प्रेम है, यानी जो ऐसे पुरुष हैं जिनके मां हेतु रहित दया हेतु रहित प्रेम है,